इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुनावम् इवम्बसि। अनुवाद: जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो श्लोक संख्या 67, परंतु 66 में कुछ रह गया था, पूरा नहीं हुआ था 66। 66 क्या है? नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम्। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला यह है कि दिव्य बुद्धि असंभव है, इम्पॉसिबल। दिव्य बुद्धि असंभव होने के कारण मन की स्थिरता असंभव है, और मन की स्थिरता असंभव होने के कारण अर्थात मन स्थिर नहीं होने के कारण शांति की कोई संभावना नहीं, और शांति की कोई संभावना नहीं होने के कारण सुख मिल नहीं सकता। लेकिन सबको क्या चाहिए? अब क्या करेंगे? है कि नहीं प्रॉब्लम? सबको सुख चाहिए, लेकिन सुख मिल नहीं सकता क्योंकि शांति संभव नहीं है। शांति इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मन अस्थिर है। मन इसलिए अस्थिर है क्योंकि बुद्धि असंभव है। तो यह फॉर्मूला हमने पिछले शुक्रवार को देखा। अब इसमें ही हमने प्रवृत्तियों का भी विचार किया था कि कौन से लोग भगवान तक आते हैं, अधार्मिक, असावधान, और जो अधार्मिक होते हैं, जो सावधान नहीं रहते, अलर्ट नहीं रहते, किसके प्रति सावधान? किसके प्रति रहना है? काल के प्रति। बात को मत भूलिए, बहुत महत्व की बात है। समय के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। समय के प्रति कौन अलर्ट रहता है? जो बुद्धिवान है। क्योंकि बुद्धि का लक्षण है अलर्ट रहना। अलर्ट रहना बुद्धि का लक्षण है, और जो अलर्ट रहता है वो बुद्धिमान है। अलर्ट रहना किसके प्रति? समय के प्रति। समय के प्रति कैसे अलर्ट रहा जा सकता है? यह ध्यान में रहे कि अपना समय बर्बाद हो रहा है क्या, अपना समय व्यर्थ में जा रहा है क्या। और समय व्यर्थ में कब जाता है? जब वो समय हमको ट्रैप करते रहता है, जाल में, जो जाल बुना हुआ है उसी में हमको फंसाते रहती है। ऐसी कोई कार्यकलाप या ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई बात हम करते रहते हैं जो हमको उस ट्रैप में फंसाए रखती है, उसको कहते हैं समय की बर्बादी। तो ऐसा समय व्यर्थ जाता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। ये सब फॉर्मूले हमने पिछले शुक्रवार को देखे हैं। भगवान श्री कृष्ण भावनामृत के तीन सिद्धांत भी देखे हैं। कौन से हैं? हितेशी है परम सुहृद है। तो प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक के ऊपर प्रवचन देते वक्त लॉस एंजल्स में कुछ इस प्रकार से कहे थे प्रभुपाद महाराज। मैं ऐसे के ऐसे ही पढ़ता हूं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शांति के पीछे पड़ा हुआ है, परंतु वे अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करना चाहते हैं। अपने इंद्रियों को वश में, बिना वश में किए ही शांति चाहते हैं, परंतु यह संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे कि आप बीमार हैं और चिकित्सक कहता है कि आप यह दवा लीजिए और यह परहेज कीजिए, परंतु आप नियंत्रण नहीं कर सकते। आप चिकित्सक के परामर्श के विरुद्ध जो भी अच्छा लगता है ले लेते हैं, तो फिर आप किस प्रकार स्वस्थ हो सकते हैं? चिकित्सक, डॉक्टर ने कहा यह परहेज करना है, ये नहीं खाना है, और ये प्रकार की दवा औषधि है वो लेना है, और उसके साथ यह परहेज करना है। परंतु यदि हम यह भूल जाए और डॉक्टर के उपदेशों का पालन न करें, तो हमारा दुख दूर हो सकता है? नहीं होएगा। प्रभुपाद जी ऐसे ही कह रहे हैं, भगवद गीता के अर्थात भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करना, अर्थात एक बहुत बड़े चिकित्सक के उपदेशों का पालन करना। उन्होंने जो परहेज कही है वो परहेज का पालन करना। अगर परहेज नहीं करते हैं और औषधि लिए जाते हैं, कितना भी ध्यान लगाइए, कितना भी योगा केंद्र में जाइए, कुछ भी, कोई भी प्रकार की टेक्निक सीख के आइए, सैंग सुई, फैंग सुई, सुन सुई, जो भी सुई, फुई सुई, आजकल बहुत कुछ है, ये सारी सुइयां एकत्रित कीजिए, सारा कुछ कर लीजिए। सु की एक कोई है, वो बोला हमको सु काम है, समथिंग लाइक दिस। क्या आपको किसने देखा है? किसको पता है? वो थेरेपी है, नहीं सु काम या सु की इस टाइप से कुछ है। तो कलर का ये बताते हैं, कलर आपको सर्दी है तो फलाना कलर आप हाथ पे लगाइए, क्या बोलते हैं, क्या उसका ऐसे ही कुछ तो नाम है। तो ऐसे अनेक थेरेपीज हैं, अनेक प्रकार की टेक्निक्स है, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आप परहेज नहीं करेंगे उसके साथ, तो टेक्निक कोई भी होने दीजिए, उसका फल प्राप्त नहीं होगा। कितना भी योगा केंद्र और ध्यान केंद्र में जाइए, लेकिन यदि नियमों का पालन नहीं करेंगे, तामसिक आहार को दूर नहीं करेंगे, समय पे सोना, समय पे खाना, तामसिक आहार को दूर करना, यदि इस बात को नहीं करेंगे, सामान्य बातें, तो उस योग का फल प्राप्त नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस प्रकार से आप स्वस्थ हो सकते हैं यदि आप नियमों का पालन या उपदेशों का पालन नहीं करेंगे। उसी प्रकार हम इस भौतिक संसार की उलझनों से बचना चाहते हैं, हम शांति तथा संपन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, है कि नहीं, ये चाहते हैं ना, परंतु हम इंद्रियों को वश में करने के लिए तैयार नहीं। उसी प्रकार से तो कैसा मिलेगा शांति और कैसे मिलेगा सुख? हम इंद्रियों को वश में करने वाला असली योग सिद्धांत ही नहीं जानते। इंद्रियों को वश में करने वाला असली ओरिजिनल योग सिद्धांत हम वही नहीं जानते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम संकट यही है कि मुख्य सिद्धांत नहीं जानते, तो फिर शांति प्राप्त करने की कोई भी संभावना नहीं, ना तो शांति प्राप्त होगी ना सुख प्राप्त होगा। यदि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं, यदि आप कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो शांति प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। लिख लीजिए पेपर पे, नोट बड़े अक्षर में लिख लीजिए पहले ही पेज पे नोटबुक के, यदि हम कृष्ण भावना भावित नहीं है तो जीवन में शांति की कोई संभावना नहीं है और सुख बिल्कुल ही प्राप्त होगा नहीं, शांति और सुख की कोई संभावना नहीं, ये हृदय पे लिख देना चाहिए। क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक रात तक प्रयासरत है, किसका प्रयास करते हैं, सुख और शांति का, लेकिन कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो कृष्ण भावना भावित के बिना सुख शांति मिलती नहीं है और हम उसका प्रयास करते नहीं है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे बनावटी तौर पर आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं परंतु यह संभव नहीं होगा। कितनी अच्छी बात कही है प्रभुपाद जी ने, बनावटी तौर पर इसका प्रयास कर सकते हैं दिखाने के लिए, बनावटी तौर पर। आजकल सारा संसार कुछ भी करता है, विशेषकर रिलेशनशिप संबंध, इसमें यदि सबसे ज्यादा बनावट किसमें आई होगी तो वो सारे संबंधों में, रिलेशनशिप में आई, बनावट, डुप्लीसिटी। हमारे भौतिक संसार में जितने रिलेशनशिप है उन सभी में हमारा बनावटी व्यवहार रहता है। अब हमको इसकी इतनी आदत हो चुकी है कि भगवान के साथ भी जब हम व्यवहार या संबंध बनाते हैं उसमें भी बनावटी कार्यकलाप करते हैं, उसमें भी हमारा जो सेवा या जो भी हमारा भाव होता है वो भी क्या होता है, बनावटी होता है। तो प्रभुपाद जी को कितना सब, प्रभुपाद जी कितना जानते हैं देखिए, तो वो क्या कह रहे हैं, बनावटी तौर पर आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं बनावटी तौर पर, परंतु ये आपको शांति और सुख इससे संभव नहीं होगा। बनावटी तौर अर्थात सब कुछ समझना, सब कुछ जानना, लेकिन उसका आचरण नहीं करना। वैष्णव शास्त्र कहते हैं नम्रता, वैष्णव जीवेर दया नाम रुचि और वैष्णव सेवा, सिंपल सिंपल बातें हैं। जीवेर दया, कोई भी जीव पे दया कर, वैष्णव सेवा भक्तों की सेवा, और नाम रुचि क्या डिफिकल्टी है। लेकिन इसके ऊपर बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, बड़ी बड़ी बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ इस पे चर्चा करते हैं, परंतु आचरण में कितना है, कितना है आचरण में। समाज का सबसे बड़ा दुख यह है, एक सादा सिंपल तत्व है, सिंपल प्रिंसिपल है, कौन सा, जीवेर दया, बाकी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं वो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाइए, सोचिए जीवेर दया। हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम बहुत रेगुलर अपने भगवद गीता का सत्संग का आयोजन करते हैं, क्या है इसका मुख्य प्रिंसिपल, क्यों करते हैं ये सब, जीव दया। यदि ये साधा तत्व हमारे हृदय में नहीं उतरा है ना, सिंपल बात है, जीव दया, जीव दया का साधा सिंपल साधा अर्थ होता है कोऑपरेशन, सहकार्य, एक दूसरे के दुख को समझो, कोऑपरेशन। बहुत ऊपर की बात बाद में सोचेंगे, भागवतम में भगवान के रूप और भगवान की लीला और भगवान की गुण, इनको समझने के लिए हृदय में द्रवता द्रवित चाहिए, हृदय द्रवित होना चाहिए, हृदय सॉफ्ट चाहिए। भगवान की इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं समझने के लिए हृदय कैसा चाहिए? मृदु सॉफ्ट चाहिए, पत्थर दिल इंसान नहीं चाहिए, हृदय सॉफ्ट चाहिए। तो भगवान कहते हैं किसका हृदय सॉफ्ट है कैसे पता चलेगा? हृदय में मृदुता, ममता, दया भाव ये है, कैसे पता चलेगा? जीव दया। आप सभी बैक टू गॉडहेड पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं? ये महीने का पढ़ा, सितंबर का, मराठी या इंग्लिश पढ़ा? पढ़ा आपने? उसमें एक बहुत सुंदर कथा है, इस बार आई है, हाँ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक अनुभव उन्होंने लिखा है उसमें, बहुत सुंदर। जीव दया, वो कहते हैं अमेरिका के कोई एक शहर के एयरपोर्ट पे वो बैठे थे, और अनाउंसमेंट हुई अचानक, क्या फ्लाइट 2 घंटा लेट है। तो सब लोग हताश हो गए, अभी क्या करें, 2 घंटा फ्लाइट लेट है, बैठ गए। परंतु एक माताजी बड़ी आवेग में आ गई, और जिस एयर होस्टेस ने वो अनाउंस किया, एक लेडी ने, कि आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि फ्लाइट 2 घंटा लेट है, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया। जैसा ही उसका अनाउंसमेंट हुआ, ये माताजी उसके पास जाके बहुत क्रोधित होके चिल्लाने लगी, ऐसा कैसे तुम कर सकते हो, हाँ, फ्लाइट 2 घंटा लेट कैसे कर सकते हो, तुम अपने आप को क्या समझती हो, कुछ भी करो, मुझे मालूम नहीं है, मैं कुछ नहीं जानना चाहती, मैं कुछ नहीं जानती, जो भी फ्लाइट अभी तुरंत निकलने वाली है उसमें मुझे बैठा दे। क्रोधित हो गए। फिर वो कहने लगी, मैडम आई एम वेरी सॉरी, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं कौन हूं। बहुत लाभ 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 लाभ, फिर एकदम क्रोध में थी। सारे के सारे वेटिंग लॉन में जो भी लोग बैठे थे वो सब उसके तरफ देख रहे हैं, और वो एकदम लाल चेहरा हो गया उसका। 56-57 ईयर्स ओल्ड माताजी है, बड़ी क्रोध में। और फिर वो जब उसके समझ में आया कि ये लोग तो कोई प्रतिसाद नहीं दे रहे, चुपचाप सुन रहे, वो बोलती जा रही, फिर वो ऐसी टर्न ली और पीछे देखी, सब लोग बैठे थे, गुस्से में थी, इसलिए सब लोग ऐसे अपने आप को छुपा रहे थे कि मेरे पास आके मुझे ना कुछ सुनाए। सब लोग ऐसे, और वो सीधे चली गई। एक व्यक्ति वहां बैठे थे, वो ऑरेंज क्लोथ में थे, सन्यासी के वेश में थे, एक कॉर्नर में अकेले अपने ऐसे बैठे थे। परंतु इस ये लेडी ने उसी व्यक्ति को देखा, सबको छोड़ दिया, उसी को देखा, और एकदम गुस्से में उसके उस व्यक्ति के पास गई, क्रोध में, और उनसे कहती, हे यू, तुम साधु हो क्या? तो वो परम पूज्य राधानाथ महाराज ऐसे ऊपर देखते हैं, मन में सोचते हैं, इतना हेक्टिक जर्नी करके आया, कितने घंटों घंटों फ्लाई करके यहाँ वहाँ प्रचार करते करते आया, यहाँ 2 घंटा फ्लाइट लेट है, सोचा थोड़ा शांति से बैठ के जप करूँगा, और सभी को छोड़ के ये मेरे ही पास क्यों आई? जल्दी बोलो, तुम साधु हो क्या? आर यू सेंट? तुम साधु संत हो क्या? जल्दी बोलो। फिर महाराज सोचने लगे, देख रहे, महाराज कहे, ऐसा ही कुछ हो, ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत समझ लीजिए आप, मे बी सपोज टू बी ओके। तुम यदि साधु हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरा प्रश्न यह है, ये सारा सब कुछ ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है करके तो महाराज एकदम देख के समझ गए कि ये बहुत ही ज्यादा आवेग में है। महाराज ने शांति से उनको बोला कि आप 2 मिनट कुर्सी पे बैठ जाइए। वो बैठ गए और फिर अपना प्रॉब्लम बताने लगे। वो कहे, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? महाराज कहे, मैं राधानाथ स्वामी हूँ और आपका क्या प्रॉब्लम है, आप शांति से बैठिए, मैं आपको कुछ बताऊंगा। नहीं, मेरा एक ही प्रॉब्लम, पहले मेरा सुनो, ये जो है ना गॉड, ये मेरे ही साथ ऐसा क्यों करता है? थोड़ी देर पहले जब यह व्यक्ति, ये लेडी उस काउंटर पे जब जोर जोर से चिल्ला रही थी, तब प्रत्येक व्यक्ति के मन में उसके प्रति जरा विचित्र भाव, क्या इतने बेवकूफ है, समझ में नहीं आता है, इतना जोर जोर से चिल्ला रही है। इनफैक्ट महाराज के भी मन में थोड़ा सा यह भाव आया कि क्या इतना भी समझदारी नहीं है, इतना चिल्ला रही है, क्या इसको अकेले कोई दुख है? एक भाव महाराज के मन में ऐसा स्पर्श करके गया। लेकिन जब वो बैठी और फिर अपना प्रॉब्लम बताने लगी तो बोले, क्या बताओ? कुछ वर्ष पहले मेरे 2 बच्चे, 2 लड़के और मेरे पति एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, मर गए। उसके पश्चात कुछ ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन किया हुआ था लोन का, पिताजी ने, सॉरी पति ने, कुछ ऐसा कुछ लोन का ट्रांजैक्शन था कि जिसके कारण वो मेरा घर भी गवर्नमेंट बैंक ने ले लिया। अब ये गॉड यहां पे भी नहीं रुका, आगे इसने क्या किया? आगे 1.5 वर्ष पश्चात मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, मैं कैंसर पेशेंट हूं। और अभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 1 महीना है, और आज मैं इस एयरपोर्ट पे आई हूं क्योंकि मेक्सिको में कोई एक ऐसा हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, जो कि इस प्रकार के कैंसर को ट्रीट करता है और जिसने बड़ी मुश्किल से मुझे आज का शाम का अपॉइंटमेंट दिया है। और उस मेक्सिको को वहां पे जाने के लिए कोई दूसरे एयरपोर्ट से मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट थी, और ये फ्लाइट लेट हो गई तो वो फ्लाइट लेट होगी और वो मिस हो जाएगी, तो मैं आज शाम को, जो कि मेरी अपॉइंटमेंट है कैंसर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, वो नहीं होगी। सोच सकते कितना दुख है, कितना दुख है। थोड़ी देर पहले महाराज उसमें लिखते हैं, थोड़ी देर पहले मैं स्वयं ये सोचता था कि ये व्यक्ति क्या पागल है, कितना भी समझ नहीं कि इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है। लेकिन अब महाराज उसपे ही लिखते हैं कि हम कभी कभी दूसरे जीव को कितना कंसिडर कर लेते हैं, कितना हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारे पड़ोसी हो, या हमारे मित्र हो, हमारे समाज के लोग हो, कोई भी हो, कितना हम दूसरे को कंसिडर कर लेते हैं, क्या ये ऐसा कर रहा है, बेवकूफ है, कोई समझदारी नहीं है इसको। पर वास्तव में उसके पीछे उसको कितना दुख होगा, इस बात को हम गौर समझ नहीं पाते क्यों ऐसा होता है हमारे साथ, क्यों होता है ऐसा। देखिए, कुछ भी कीजिए, बहुत कार्यकलाप, आध्यात्मिक कार्यकलाप या कोई सेवा या धार्मिक कृत्य, धार्मिक विधि कुछ भी कीजिए, परंतु यदि जीव दया नहीं है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक योग्यता या क्वालिफिकेशन है भक्ति प्राप्त करने के लिए, जीव दया, यथा योग्य जो होता है जीव के प्रति दया भाव होना चाहिए। तो महाराज इस उसमें से यही संदेश देते हैं कि जीव दया होना चाहिए। उसके पश्चात उन्होंने उस व्यक्ति के साथ थोड़ी देर बातचीत की, जितनी देर तक फ्लाइट लेट थी, बहुत से उन्होंने प्रश्न पूछे, महाराज ने बहुत से उत्तर दिए, और बहुत से उत्तर दे रहे हैं। उनकी अंततः 2-3 घंटे बाद फ्लाइट आई, उन्होंने अपना जर्नी प्रारंभ किया, उतर गए। उतरते वक्त जब महाराज को वो मिली तो कहे कि जब महाराज ने उसको मंत्र दिया, कहा हरे कृष्ण महामंत्र, तो वो कही कि ये मंत्र तो मैं बोल नहीं सकती, मुझे याद ही नहीं रहेगा ये मंत्र। तो आप सोच सकते हैं हम भारतीय लोग कितने भाग्यशाली हैं। किसको भी बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, कोई भी सीख जाता है एक बार बोलने से, सीख गया। उन लोगों की दुर्दशा देखिए कि वो इसको ध्यान में भी नहीं रख सकते इस मंत्र को, तो महाराज ने उनको अपने हाथ से लिख दिया उसको ये महामंत्र। और ये महामंत्र वो पूरे टाइम फ्लाइट में उसका जप करती रही पूरा टाइम। जब वो उतरे नीचे तो महाराज ने उनकी तरफ देखा, उसके आंखों में अश्रु आ रहे थे, दूर से देखा महाराज ने। तो वो लेडी अपने व्हील चेयर से महाराज के पास आई और वो कहने लगी, स्वामी अब चाहे मुझे सुख मिले कि दुख मिले, मैं ये तुमने जो मंत्र दिया है इसका जप करते रहोगी, बड़ा आनंद है। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, मुझे वो भगवान वो गॉड सुख दे चाहे दुख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं ये जप इस मंत्र का जप करते रहूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सोच सकते हैं एक जीव जो अपने भौतिक दुखों के कारण इतना त्रस्त हो चुका है कि जो उस व्यक्ति सामने आएगा उसके उसको उसके ऊपर क्रोध प्रकट करेगा, क्रोधित हो गई है यह व्यक्ति। आपने देखा एयरपोर्ट पे क्या किया इस व्यक्ति ने, क्रोध प्रकट किया, भयंकर क्रोध प्रकट किया, है ना। परंतु इस जीव के ऊपर जब एक भक्त ने, एक शुद्ध भक्त ने, एक साधु ने दया दिखाई, जीव दया, तो क्या हुआ, क्या हुआ, उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का सब कुछ छीना गया, जिसको भगवान के प्रति कुछ पता नहीं है, उस व्यक्ति का मन हरि नाम में लग गया, है कि नहीं विशेष बात। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि जीव दया, उस जीव के ऊपर किसी ने दया दिखाई, उसके दुख को समझा, ये नहीं कहा कि क्या है दुख तो सभी को आता है, क्या इतना सोच रहे हो, डोंट वरी, टेंशन मत लो, छोड़ो, ऐसे नहीं बोला, सहानुभूति दिखाई। महाराज इवन वहां पे एक यह भी वाक्य लिखते हैं, बात लिखते हैं, कहते हैं यदि मेरे पास ऐसी जादू होती कि मैं उस जादू के उस मंत्र का उच्चारण करूं और उस मंत्र का उच्चारण करते से इसका पूरा कैंसर निकल जाए तो मैं तुरंत उस मंत्र का उच्चारण करूं, या मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी होती तुरंत उस छड़ी को घुमा देता। सोचिए जीव दया, ये दया भाव उनके हृदय में है कि इस व्यक्ति का दुख समझा है, और दुख समझने के पश्चात उन्होंने उनको कृष्ण नाम का वर्णन किया, महात्म्य बताया, और तब जाके उस व्यक्ति का कृष्ण नाम में रुचि उत्पन्न हुआ। अब वही व्यक्ति पूरे जीवन भर इतने दुख में थी, बच्चे एक्सीडेंट में गए, पति एक्सीडेंट में गए, कैंसर हो गया, घर प्रॉपर्टी सब कुछ छीना गया, वो माता जी कहती अभी मेरे पास केवल जो पर्स आप देख रहे हैं वो एक पर्स है, गवर्नमेंट के कोई डोनेशन पे वो जा रही थी कैंसर ट्रीटमेंट लेने के, केवल वो पर्स मेरी प्रॉपर्टी है, संपत्ति। परंतु क्योंकि एक शुद्ध भक्त ने दया दिखाई, हरिनाम में उसकी रुचि उत्पन्न हो गई, अब वो कह रही है कि अभी चाहे सुख आए या दुख आए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो अभी हरिनाम, ये तुमने जो मंत्र दिया है उसका उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से अभी हम प्रभुपाद जी जो कहते हैं कि प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण भावना भावित रहें, और कृष्ण भावना भावित रहने के लिए जीवेर दया, वैष्णव सेवा और नाम रुचि, इनका प्रवचन थोड़ा बंद होगा तो अच्छा है, बहुत जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर आगे उसी श्लोक में कहा है अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वह सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, अर्थात जो शांत है वही सुख पा सकता है। ऐसी अवस्था शांति किसको कहते हैं, शांति का अर्थ क्या है? शांति का अर्थ है ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति को न तो वर्तमान में कष्ट का अनुभव होता है न उसको भविष्य की चिंता होती है। भविष्य की मुख्य चिंता क्या है? मृत्यु। वो मृत्यु के चक्कर में ही भविष्य की सबसे बड़ी चिंता वही है। तो शांति उसी को कहते हैं जो जो व्यक्ति वर्तमान का जो विषय है, वर्तमान में जो कष्ट का अनुभव हो रहा है उसके प्रति वो कोई चिंता नहीं करता है। वर्तमान में जो कष्ट हो रहा है उसके प्रति वो कोई चिंता नहीं करता है, और भविष्य में आने वाला दुख जो आएगा उसके प्रति उदास नहीं होता है। ऐसी अवस्था को शांति कहते हैं। अब इस माताजी को जो महाराज ने मंत्र दिया था उसका उसने 2 घंटा उच्चारण करने के पश्चात उसकी यह अवस्था हो गई थी। अब वो क्या कहती है, चाहे सुख है दुख है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी तो मुझे आनंद आ रहा है, अभी मैं बस हरिनाम दे रही हूं, चाहे सुख है चाहे दुख है। तो शांति उसी को कहते हैं कि वर्तमान की स्थिति, वर्तमान अभी अभी के समय में कष्ट हो रहे लेकिन कोई चिंता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, भविष्य में ऐसा होगा कोई बात नहीं, कृष्ण है, उसको कहते उस अवस्था को कहते शांति की अवस्था। तो अभी हम आगे का श्लोक लेते हैं 2.67। तो ऐसी शांति की अवस्था हमको भी प्राप्त होनी चाहिए, नहीं कि कौन नहीं चाहता है संसार में शांति, बताइए किसको नहीं चाहिए इसमें शांति, नहीं चाहिए भाई बहुत बोर होता है शांति नहीं चाहिए, कोई है ऐसा, कौन किसको नहीं चाहिए, किसको चाहिए शांति, चाहिए उसके लिए तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलना पड़ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांति को प्राप्त करने के लिए कुछ कभी कभी थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है कि नहीं, क्योंकि मन जो है कहीं ऐसी विषयों में लग चुका है, वही वही परिस्थिति है, सेम सिचुएशन, सुबह उठो दिन भर काम करो रात को सो, सुबह उठो दिन भर काम करो, वही सिचुएशन वही सब सब कुछ वही, तो मन कभी कभी उद्विग्न हो जाता है ऐसी परिस्थिति से, तो उसको थोड़ा सा चेंज चाहिए रहता है, उसको थोड़ा सा चेंज अलग सा वातावरण चाहिए रहता है, उसमें भी यदि दिव्य वातावरण मिल जाए तो सोने पे सुहागा है ना। तो अगले शनिवार को हम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं उसको क्या कहते हैं, वर्कशॉप, वर्कशॉप कहते हैं ना, तो नेक्स्ट सैटरडे हमारा वर्कशॉप है, अभी बहुत थ्योरी हो गई तो नेक्स्ट सैटरडे वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में हम सेवा भाव, सेवा क्या होता है, सेवा कैसे की जाती है, गो सेवा कैसे की जाती है, गो माता क्या है, क्यों करनी चाहिए गो सेवा, कुत्तों की सेवा क्यों नहीं करते और गाय की सेवा क्यों करते हैं बहुत लोग कुत्तों की भी सेवा करते हैं, अपने घर में रखते हैं कुत्तों को है, पर उसको शास्त्र में बताया नहीं है कि कुत्तों की सेवा करो, कुछ कारण होंगे, क्या कारण है उसकी चर्चा होगी, किसकी सेवा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ऐसे एक शांत आध्यात्मिक वातावरण में जाके वहां पे बैठ के हम एक्सपेरिमेंट करेंगे है ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां पे जप करेंगे कि इस प्रकार से जप करने से क्या होता है, अनुभव करने का प्रयास करेंगे, प्रवचन होगा मंदिर में, जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा जी है वहां पे, कीर्तन प्रसादम प्रवचन सब होगा, फिर थोड़ा खेत वगैरह है वहाँ पे जाके फार्म टाइप फार्म में जाएंगे, उस फार्म में नैसर्गिक वातावरण में प्रैक्टिकल वर्कशॉप करने का प्रयास करेंगे, गौ माताओं का सानिध्य होगा। तो ऐसा सब कुछ एक दिन का प्रोग्राम है। शनिवार को निकलेंगे सुबह 10 बजे और रविवार को 2-4 बजे वहाँ से निकलेंगे, 3 बजे 6 बजे तक आपके घर पे। तो ये एक बहुत अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट मौका है। हम वापी के लिए प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट प्लान कर नहीं रहे, प्लान कर लिया है। तो आप सभी को वापी के इस वर्कशॉप में आना चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए, है ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे जाएंगे, यहाँ से ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से आ जाएंगे। बोरीवली से ट्रेन छूटती है, बहुत सारी ट्रेन है, 2 घंटे का जर्नी है, 2-2.5 घंटे का। ट्रेन से जाएंगे, वापस ट्रेन से आएंगे। और आप सभी के चेहरे पे कोई उत्साह नहीं दिख रहा है, प्रैक्टिकल करने का उत्साह है कि नहीं है? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप अवश्य चलिए 2 दिन का हरिनाम वर्कशॉप, क्योंकि हरिनाम सप्ताह चल रहा है, तो हरिनाम भी सब साथ में होगा। हरिनाम का आधे घंटे का कुछ प्रवचन भी होगा, गौ सेवा के ऊपर भी वर्कशॉप होगा, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। दूसरा और तीसरा टॉपिक रहेगा गृहस्थ जीवन, है कि नहीं? नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नहीं? गृहस्थ जीवन, हम सब गृहस्थ हैं। क्या होता है ये गृहस्थ जीवन में, केक का उथला पुथल होती है कि सब शांति से होता है, क्या है गृहस्थ जीवन, कैसा गृहस्थ जीवन होना चाहिए? एक गृहस्थ में पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर, यानी क्या सास बहू, ये सब रिलेशनशिप में कभी ना कभी कोई ना कोई धांधली हो ही जाती है। सभी के सभी को ये अनुभव है, सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास थी, ऐसा सब चलते रहता है। तो गृहस्थ जीवन जो प्रभुपाद जी ने जिसकी व्याख्या की है, गृहस्थ जीवन कैसे होना चाहिए, गृहस्थ किसको कहते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी इंटरैक्टिव चर्चा होगी, है कि नहीं? सब गृहस्थ इसलिए सब गृहस्थ बोलेंगे, और इस प्रकार से पूरा वर्कशॉप होगा, फुल प्रोग्राम। तो भगवद गीता पे अभी तक हम क्या सीखे हैं इसके विषय में आप हमको बताएंगे, हम तो भूल गए हैं। तो आप बताएंगे क्या क्या कुछ काम में आया कभी आपके, और अपना अनुभव बताएं। कोई वहाँ पे प्रवचन नहीं देना है, ये बताना है कि भगवद गीता में जो सीखे हैं उसका फलाने फलाने दिन ऐसा ऐसा कुछ हुआ और वो मुझे स्मरण हुआ उस समय, ऐसा अप्लीकेशन, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा मन जो इस प्रकार से दूसरी ओर लगा हुआ है, विषयों में लगा हुआ है, वो विषयों से हट के थोड़ी देर के लिए आध्यात्मिक जगत का आनंद लेगा, नहीं? इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी ने आना चाहिए कंपलसरी माता जी के पास। अभी आप आज ही प्रवचन के पश्चात नाम लिख दीजिए और एकदम डिटेल माता जी आपको समझाएंगे किस प्रकार से वहाँ जाना है, कैसा है, वो ट्रेन से है पर कितने बजे आना है, क्या वगैरह सब आपको माता जी बताएंगे प्रवचन के पश्चात, ठीक है? तो सैटरडे संडे वैसे भी सभी को छुट्टी होती है, मान लो किसी को छुट्टी नहीं है तो क्या करना चाहिए, हाँ क्या करना चाहिए, कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना चाहिए, दांडी मारना चाहिए छुट्टी लेना चाहिए, दांडी मारना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं। भौतिक जगत में तो रोज प्रैक्टिकल है और उससे अब त्रस्त भी हो रहे हैं, थोड़ा आध्यात्मिक जगत में प्रैक्टिकल करके देखिए एक दिन, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो श्लोक संख्या 67 अध्याय दूसरा अध्याय दो श्लोक संख्या 67। इंद्रियाणां हि चरतां यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम इवाम भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, हाँ, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन नियंत्रित निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। वो आपको स्मरण होगा, मैं भूल गया, वो शिप का नाम क्या था जो डूब गई? टाइटैनिक। टाइटैनिक इस श्लोक से कुछ याद है? टाइटैनिक वगैरह उसको बनाने वाला कहता था इस शिप को गॉड भी नहीं डुबा सकता। क्या कहता था? इस शिप को गॉड भी नहीं डुबा सकता, भगवान भी इस शिप को नहीं डुबा सकता, इतनी फुल प्रूफ बनाई हुई है। जिस दिन उसने ये स्टेटमेंट किया उसी दिन वो शिप डूब गई। तो यहाँ पे जो क्यों डूब गई, तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया है भगवान ने, कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, टाइटैनिक वो समझा रहे हैं, जिस प्रकार पानी से तैरती नाव को प्रचंड वायु तूफान दूर बहा ले जाता है, दिशाहीन कर देता है, अंत में डुबो देता है, उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार मन इंद्रियों में निरंतर लगा रहने के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे वो नाव डूब जाती है, चाहे कितने भी बलशाली और फुल प्रूफ शिप जहाज नाव होने दो, परंतु जब वायु बलशाली होती है, वायु का बल बढ़ जाता है, तो वो नाव डूब जाती है। टाइटैनिक जैसी नाव नहीं बची। तो इस यह श्लोक बेसिकली देखे आप 60वां श्लोक पे देखिए 2.60 का ही कंटिन्यूएशन है, उसी को ही भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए। इसमें जो बताया गया है अनुवाद में, तात्पर्य में, अनुवाद में जो प्रभुपाद जी लिखते हैं और भगवान कृष्ण इस श्लोक में जो बताते हैं वो क्या है, वो कहते हैं एक नाव की उपमा दे रहे हैं, नाव कह रहे हैं। नाव किसको कह रहे हैं इसमें? हाँ, मनुष्य शरीर। ये जो नाव का इसमें उदाहरण दिया है वो ये है कि मनुष्य शरीर, नाव अर्थात मनुष्य शरीर, फिर क्या कह रहे हैं, सागर अर्थात जल। नाव किस में तैरती है, कहां पे तैरती है? पानी में तैरती है ना, जहाज पानी में तैरता है। अब ये मनुष्य शरीर रूपी जहाज पानी में तैरता है, अर्थात ये संसार को पानी कहा गया है, सागर कहा गया है। संसार को क्या कहा गया है? सागर कहा गया है। फिर कहते हैं कि ये वायु इस संसार रूपी सागर में मनुष्य देह रूपी नाव चल रही है, तैर रही है, परंतु इस नाव को वो वायु क्या करता है, दिशाहीन करता है, बहा ले जाता है और अंत में उस तूफान में डुबो देता है। तो ये शरीर रूपी नाव का, नाव को कौन सा वायु दिशाहीन कर सकता है? मन, मन की लहरें। बड़ा लहरी मन है बोलते है किसी का। अरे लहरी मन तो सबका है। किसकी लहरें बाहर नहीं निकलती, अंदर ही अंदर लहराती है। किसकी लहरें शरीर पे चेहरे पे दिख जाती है ना। फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं ना इंग्लिश में, और फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। मन में क्या चल रहा है वो शरीर पे दिखता है, शरीर ऐसा चेहरे पे दिखता है। चेहरे को देखो तो मानसिकता समझ में आ जाएगी, है से होता है, तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो ये वायु जो है ये क्या है, मन के आवेग, मन के अंदर आने वाले आवेग, आसक्ति, अट्रैक्शंस, खिंचाव, ये वायु है। देखिए भगवान क्या सुंदर उपमा दे रहे हैं, मनुष्य देह जहाज है, ये संसार, ये प्रकृति जिसमें वो रहता है, वो संसार, वो प्रकृति सागर है। ये देह रूपी शरीर में जो मन है वो वायु का काम करता है। मन की आसक्तियां या मन के आवेग वायु का काम करते हैं। अब इस जहाज का कैप्टन कौन है? इस जहाज का कैप्टन है बुद्धि, इंटेलिजेंस। कौन है? बुद्धि। पूरा कंप्लीट जहाज हो गया है कि नहीं? देखो फिर से एक बार बताता हूं, शरीर मनुष्य देह जहाज है, संसार रूपी सागर में तैर रहा है, चेष्टा कर रहा है तैरते रहने की, तैर रहा है, लेकिन वायु बड़ी उदंड है, वायु का वेग बड़ा तूफानी है। और वो वायु कौन है? मन, मन के आवेग। अब ऐसी भयंकर स्थिति में इस नाव को चलाने वाला तो बहुत ही अच्छा कैप्टन चाहिए, एक्सपीरियंस्ड या बड़ा ही सोच बूझ रखने वाला कैप्टन चाहिए, नहीं साधारण कैप्टन से काम, अच्छा चाहिए कैप्टन, एक्सपीरियंस्ड, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने वाला। कहते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड अर्थात विवेक बुद्धि, विवेकी कैप्टन चाहिए, अर्थात जो कैप्टन जो है वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस, वो है कैप्टन इसका। लेकिन ये इंटेलिजेंस कैसा होना चाहिए? विवेक पूर्ण, ये नहीं कि बस हमने कोई क्रिकेट में क्रिकेट के खेल में कोई पारितोषिक, कोई कप प्राप्त किया है तो अब हम बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट हैं, ऐसा नहीं है। हमने कोई बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करके उसमें सक्सेस किया है, क्या बिजनेस है? सिगरेट के रैपर बनाने का या सिगरेट को बहुत अच्छी डिजाइन बनाने का, सिगरेट का अच्छा डिजाइन, तंबाकू के पैकेट्स बनाने का। हम तंबाकू नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं? उसके पैकेट्स बहुत अच्छे पॉलिश कर, हमने इतना अच्छा किया है कि हमको इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया है, बहुत बुद्धिमान है हम। क्या ये बुद्धि है? क्या ये विवेकी कैप्टन है? क्या ये सूझबूझ रखने वाला कप्तान है इस नाव का? नहीं, कप्तान चाहिए विवेक बुद्धि वाला, ऐसी बुद्धि जिसमें विवेक है, वो कैप्टन है। अब कैप्टन भी हो गया, नाव भी हो गई, समुद्र भी है, वायु भी, सब कुछ। कौन सी दिशा में जहाज चलाना है? समुद्र में आप गए कभी? बोट वोट में कभी समुद्र के बीचों बीच जाके देखिए और हमको बताइए कौन सी ईस्ट कौन सी और वेस्ट कौन सी है। बीचों बीच जाए और आपको पूछे कम 25-30 किलोमीटर अंदर जाइए, ज्यादा भी नहीं, और आपको पूछा जाए अभी बॉम्बे कहाँ है बताओ, तो आप दुबई की ओर इशारा करोगे। बॉम्बे पता नहीं है कहाँ है, दिशाहीन हो जाते हैं समुद्र में। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? निडल, कंपास रखते हैं वो, है ना, उसमें ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब पता चलता है ना। तो ये शरीर भी तो जहाज है, इसमें कंपास का काम कौन करता है? बुद्धि तो कैप्टन है, और शास्त्र कौन करता है? शास्त्र क्या करते हैं? दिशा दिखाते हैं कि ये दिशा से चलो, ये दिशा से चलो। जब ये शास्त्र के अनुसार, शास्त्र ने बताई हुई दिशा पे हम हमारे इस नाव को, इस जहाज को चलाते चलाते जाएंगे तो अंततः कहां पहुंचेंगे? कोई पोर्ट पे पहुंचेंगे, कोई तट पे पहुंचेंगे जहां हमको जाना है, हमारा जो डेस्टिनेशन है ना, उस डेस्टिनेशन पे, उस उद्देश्य पे हम पहुंच जाएंगे, उस तट पे हम पहुंच जाएंगे और प्रेम से उस नाव के नीचे उतर जाएंगे। परंतु यदि हमारे पास सोचिए वो कंपास नहीं है और हम सोचे कि हम तो बहुत बुद्धिमान है, हम तो कैप्टन है, हमको तो हजारों वर्ष का एक्सपीरियंस है, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हम तो 50 साल से कितने सारे क्या कहते हैं, हमने बहुत धूप छाव देखे हैं। आपको कहे प्रभु जी कभी भगवद गीता के क्लास में, ये हमने बहुत धूप छाव देखे भाई, अभी क्या भगवद गीता समझाएंगे हमको, बचपन से तो अभी 70 साल की उम्र हुई अभी तक भगवद गीता सब सुनी है, क्या भगवद गीता बोल रहे, रामायण महाभारत भागवत ब्रह्मांड पुराण शिव पुराण पद्म पुराण वराह पुराण सब पढ़ लिया हमने, अभी आप क्या बता रहे। तो ये कैप्टन कितना भी बुद्धिमान होने दीजिए, कैप्टन कितना भी इंटेलिजेंट होने दीजिए, उसको 500 वर्ष का अनुभव होने दीजिए, लेकिन बिना कंपास के वो चलता है क्या बताइए, चल सकता है नहीं चल सकता, कितना भी बुद्धिमान होने दीजिए। मनुष्य कितना भी कहे कि हम बहुत ही बुद्धिमान है, हमको सब समझ में आता है, हम करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं, हजारों टाइप के बिजनेस करते हैं, लाखों लोग हमारे अंडर काम करते हैं, सब कुछ बराबर है, लेकिन ये सागर है, सागर समुद्र, इसमें दिशा नहीं समझ में आती है। दिशा समझना है तो क्या करना पड़ेगा, कंपास पास में रखना होगा, शास्त्र का अध्ययन और उपदेश से ही आगे बढ़ना होगा। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा शास्त्र है, ऐसे उपदेश इसमें है जो कि मनुष्य को कदम कदम पे एक एक क्षण पे बता सकता है कि अब ये डायरेक्शन में जाओ, अब ये डायरेक्शन में जाओ, अब ये डायरेक्शन में जाओ, एक एक क्षण ये भगवद गीता हमको बताती है। अभी ऐसा हो रहा है आपके साथ, ये राइट लो राइट, अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, चुप बैठो, अभी चुप बैठो, शांत रहो शांत रहो शांति, अभी कुछ गड़बड़ हो रही है, बस ज्यादा मत बोलो, दो वाक्य ही बोलो बस। ये एक ऐसा शास्त्र जो कंपास का काम करता है, सारे काम छोड़ के, इसलिए हम बार बार बोलते हैं भगवद गीता तत्व ज्ञान है, अप्लाइड साइंस है, हमारे लिए हमारे, देखिए बहुत बार ये हो जाता है ना, क्योंकि भगवद गीता हमारे स्वयं के बहुत सारे खामियों को बताता है ना, तो फिर मजा नहीं आता क्लास में। है ना, कभी ऐसा बताए ध्रुव महाराज ने क्या किया, प्रहलाद महाराज ने क्या किया, वो फलाने अम्बरीश महाराज ने क्या, अरे बहुत उन्होंने दुख झेला, वो पांडवों ने बहुत तकलीफ सही, फिर उनके बारे में है ना, वो मजा आती है, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि अपने विषय में नहीं है। भगवत गीता अपने विषय में तो है ही है, परंतु अपने अंदर के खामियों के विषय में, कमियां जो है हमारे अंदर जो गड़बड़ियां है उसके विषय में भगवान बता रहे हैं, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा देर सुनने के लिए मजा नहीं आता है भगवत गीता में। कई बार हम देखते हैं 1.5 घंटा हो गया कि सबके चेहरे ऐसे लगते हैं कि अब कब खत्म होगा और कब हम नेक्स्ट फ्राइडे के लिए कुछ छोड़ेगी कि नहीं। है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अर्जुन को सोचिए, अर्जुन को तो, अर्जुन का मृत्यु सामने है, जन्म और मृत्यु की परिस्थिति है, कितना श्रवण की आतुरता और उत्कंठा अर्जुन में है कि वो भगवान का एक शब्द भी यहां वहां नहीं जाने दे रहा। आप देखते अभी कितने प्रश्न पूछे उसने, अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे, अभी दूसरा ही अध्याय चल रहा है, और आगे आप देखेंगे जुगलबंदी, भगवान उत्तर दे रहे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे, भगवान उत्तर दे रहे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे, उत्तर पे प्रश्न, है कि नहीं, कितनी उत्कंठा कितनी आतुरता, ये जो प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, वो किस लिए होते हैं? हमारे अंदर भगवान के उपदेशों को सुनने की उत्कंठा बढ़े, उत्कंठित हो जाए। हाँ, इसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी समाज में ऐसा हो जाता है, ये प्रभु जी को कुछ काम धंधा नहीं है शायद, इसलिए ऐसे आते जाते बड़बड़ करते रहते। बहुत से लोगों को ये धारणाएं होती है, क्या है ये जो प्रवचन करते हैं लोग, इनको कोई काम नहीं होता है, सारा काम तो हमको ही होता है, इनको क्या काम धाम है। हमको ये है, वो है, ऑफिस है, घर है, संसार है, इनको क्या काम है। हमको ये अनुभव, हमको पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बात का। विशेषकर काउंसिलिंग मीटिंग का। 1.5 साल से काउंसिलिंग मीटिंग शुरू हुई, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, 20 लोगों का नाम है। होता क्या है, 12 लोग आते हैं, नेक्स्ट टाइम 4 लोग अब्सेंट रहते हैं, फिर उसके नेक्स्ट टाइम वो जो अब्सेंट रहे उनको देख के दूसरे सोचते वो अब्सेंट, अभी मैं भी अब्सेंट रहता हूं, फिर वो अब्सेंट रहते हैं, फिर तीसरे टाइम हम बोलते हैं अरे बहुत अब्सेंट रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर हम कहते हैं हम आपको मैसेज करते हैं, जरा उसका रिप्लाई तो भेजो, अब्सेंट हो। एक का भी रिप्लाई आता नहीं, जो नहीं आते उनका कभी रिप्लाई नहीं आता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह, प्रभु जी क्या है, टाइम पास है उनको, उनके पास बहुत टाइम है, आते हैं अपना समय बर्बाद करते हैं, उनके पास तो समय है, हमारे पास तो नो लिखने का भी समय नहीं है SMS उनको कि हम नहीं आ सकते, नो। परंतु ये सब जो सत्संग इसलिए होता है कि हमारी उत्कंठा बड़े श्रवण के लिए, नहीं, श्रवण की उत्कंठा, ये नहीं कि कोई अमुक क्लास, आप शास्त्र अध्ययन करने के लिए मंदिर में जाइए, मंदिर में रेगुलर जाइए, जहां जा सकते रेगुलर जाइए और श्रवण कीजिए। परंतु ये तो कभी हो, बड़ा मुश्किल से होता है, हम श्रवण वही करते हैं जो हमको मजा देता है, मनोरंजन करता है, उसमें आनंद आता है, परंतु यदि हमको ट्रांसफॉर्म करने की यदि कोई बात होती है, हमको बदल, हमारे जीवन में बदल करने की कोई बात, कोई उपदेश शास्त्र देता है, अरे नेक्स्ट सैटरडे क्या है प्रभु जी, एक मीटिंग आ गया अर्जेंट। क्या फलाने ने बुलाया, ढिकाने ने बुलाया, घर में ये हो गया, किसी का बर्थडे आ जाता है। हमारे घर पे बर्थडे है, बोले आज हम नहीं आएंगे। तो ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि अभी तक भी हमारी उत्कंठा नहीं बढ़ी है। बड़ा दुख का विषय है ये, मैं बोलना नहीं चाहता था, पर अभी मैं भी, प्रत्येक व्यक्ति को एक लिमिट होती है, मर्यादा होती है, अब वो मर्यादा खत्म हो गई कि फिर वो सब बदलना पड़ता है, नियम कायदे कानून सब। तो अब हम काउंसलिंग मीटिंग के बारे में थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, कोई एक कॉमन प्लेस रहेगी, किसी के भी घर पे नहीं होगा काउंसलिंग, कोई एक कॉमन प्लेस होगी, उस कॉमन प्लेस में बहुत और कोई 4-5 लोग आना चाहते, 5-7 लोग, उनके भी फॉर्म्स लेके, वो भी, उनको भी फॉर्म्स मिल जाएंगे, वो भी काउंसलिंग में आ सकते हैं। और जो लोग 3 बार कंटिन्यूस अब्सेंट है, वो हमको मिले बिना 4th बार चौथी समय काउंसलिंग में नहीं आएंगे, ये स्ट्रिक्ट रूल, क्योंकि समय सभी का बहुत महत्व का है, जो इतर लोग काउंसलिंग में आते हैं उनका भी बहुत महत्व का समय होता है, सभी का समय बहुत महत्व का होता है, सभी प्रयास ये कर रहे हैं कि प्रत्येक का जीवन उच्च स्तर का जीवन हो, है ना, काउंसलिंग या बाकी कोई भी क्लास का अर्थ क्या होता है, जीवन उच्च स्तर का हो जाए हम सबका। परंतु इसमें कोई आलस्य यदि आ जाता है तो वो संभव नहीं हो पाता, इसलिए नहीं जाइए। दिशाहीन जब हम होते हैं तो ऐसे एक्सक्यूजेस हमको बहुत मिल जाते, कोई भी कार्य यदि हमको नहीं करना है तो वो कार्य हम जीवन भर नहीं करेंगे, इतने कारण हमको मिल सकते हैं। मान लो मुझे आपसे मिलना नहीं है, प्रभु जी ने मुझे बोला कि प्रभु जी मैं कल आपसे मिलना चाहता हूं और मुझे आपसे मिलना नहीं है, तो अरे प्रभु जी कल नहीं हो पाएगा, ठीक बात है, फिर परसों आपका फोन आया, प्रभु जी मैं आपको कल मिलना चाहता हूँ। अरे कल? कल तो प्रभु जी मेरे यहाँ गेस्ट आ, अच्छा ठीक है जाओ। फिर 8 दिन बाद आपका फिर फोन है, प्रभु जी मैं आपसे मिलना है। अरे प्रभु जी आज आज तो प्रवचन है, अच्छा ठीक है जाओ। फिर 15 दिन बाद ऐसा मैं आपको जीवन भर एक्सक्यूज देता रहूंगा, क्योंकि मुझे वो काम करना नहीं है। किसी व्यक्ति को कोई काम यदि करना नहीं है तो वो व्यक्ति वह काम जीवन भर नहीं करेगा, और उस वो नहीं करने के लिए उसके पास जीवन भर एक्सक्यूज मिलेगा। तो इसलिए यहां पे जो नाव रूपी शरीर बताया गया है और उसका कैप्टन बताया गया है बुद्धि, और उसको दिशा देने वाला जो है वह शास्त्र। तो हमको क्या करे क्या न करे यह समझने के लिए शास्त्र का आधार, राइट जाए कि लेफ्ट जाए, कौन सी दिशा में जाए, क्या करे, इसके लिए हमको क्या करना होगा, शास्त्र का आधार लेना पड़ेगा, शास्त्र के उपदेशों के अनुसार मार्गक्रमण करना होगा। और यही भगवान इस समय यहां पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि यदि मान लो कोई जहाज को कप्तान ही नहीं है, कैप्टन ही नहीं है, तो क्या होगा? वो जो वायु है, वायु क्या करेगा, वो अपने हिसाब से ले जाएगा उसको, अपने हिसाब से, जिस वो वायु को उस जहाज को जहां ले जाना है, सॉरी बड़े पत्थर पे भी वो ले जा सकती है, अंदर बहुत बड़े रॉक्स रहते हैं, टक्कर हो जाती है, उसके ऊपर भी जहाज ले जा, वायु कहीं कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कैप्टन नहीं, कप्तान नहीं है। हाँ, इस श्लोक में क्या कहा है, जिस किसी इंद्रिय के साथ मन लगा हुआ है, हाँ, जिस पर भी उस मन का ध्यान जाता है, जिस कोई भी इंद्रिय के साथ मन लगा हुआ है, वह इंद्रिय व्यक्ति के बुद्धि का हरण कर लेता है। वो इंद्रिय क्या करता है, व्यक्ति के बुद्धि का हरण कर लेता है। इंद्रियाणाम ही चरताम, पहला ही पंक्ति में लिखा हुआ है, अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती, उसका क्या होता है, इंद्रियाणाम ही चरताम, वो इंद्रियों में उसका मन लगा रहने के कारण बुद्धि स्थिर नहीं होती, क्योंकि अयुक्त व्यक्ति की इंद्रिया श्री कृष्ण की सेवा में नहीं होती है, वह विषय की सेवा में होती है, माया की सेवा में होती है। अब आप 64 में देखिए, श्लोक संख्या 64, उसमें भगवान ने कहा है अयुक्त और विधेय आत्मा, पढ़िए श्लोक, विधेय आत्मा, इसके पहले अयुक्त की व्याख्या की थी और इस 64 में विधेय आत्मा की व्याख्या भगवान कर रहे हैं। तो अयुक्त किसको कहा गया है, अयुक्त और विधेय आत्मा दोनों लोग क्या करते हैं, इसी संसार में दोनों में क्या अंतर है, अयुक्त अर्थात जो भगवान के भगवान कृष्ण भावना भावित नहीं, वो अयुक्त, और विधेय आत्मा कौन, जो कृष्ण भाव, शॉर्ट में जो कृष्ण भावना भावित। अब ये दोनों में अंतर क्या है, हा? इस संसार में तो दोनों भी विचरण करते हैं ना, है कि नहीं, दोनों भी इसी संसार में रहते हैं और दोनों भी एंजॉय करते हैं, दोनों भी भोग में आनंद लेते हैं, जो कृष्ण भावना भावित है वो भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और जो कृष्ण भावना भावित नहीं वो भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो भी पानी पूरी खाते हैं, जो है वो भी पानी पूरी खाते हैं। अंतर क्या है,
नियम के अनुसार कवच, शास्त्र के अनुसार,
आप क्या कहें, कवच, कवच पहने हुए रहते हैं। अंतर यही है कि एक कृष्ण की सेवा में लगा रहते हैं, लगे रहते हैं, और एक दूसरे जो है इंद्रिय की सेवा में लगे, अपने स्वयं के शरीर के सेवा में लगे रहते हैं, और दूसरे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। विधेय आत्मा जो होते हैं, यह मुख्य बात है, जो विधेय आत्मा होते हैं वो शांत रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर राग और द्वेष नहीं होता है। भक्तों के अंदर राग और द्वेष नहीं होता है, और अभक्तों के अंदर फूट फूट कर, क्या, कूट कूट कर भरा हुआ रहता है राग और द्वेष। जरा सा कुछ हो जाए, राग और द्वेष उफान के बाहर आता है। यहां तक आता है कि इतने स्तर पे द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है कि हिंसा करता है। यह आतंकवाद एक उसी का परिणाम है। आतंकवादी 4 साल के बच्चे के पैर पे फायर कर दिया गोली। वो बच्चा कहा, हे डेमन, हे बैडमैन, तूने मेरे मम्मी को क्यों फायर किया? 4 साल का बच्चा आतंकवादी को पूछता है। जैसा ही बच्चा 4 साल का उस आतंकवादी को पूछता है, उसके पैर में वो गोली मार देता है आतंकवादी। द्वेष, राग और द्वेष, भयंकर आतंकवाद। घर का, घर के आतंकवाद से लेके तो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद तक जितने भी आतंकवाद, द्वेष है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है, यह लोग अपने इंद्रियों की ही सेवा में पूर्णतः लगे हैं, भगवान की सेवा में नहीं है। वो झूठ बात है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, ये ढोंग है, द्वेष का स्तर इतना लंबा है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि इसकी बुद्धि सेवा में लगी रहती है, दूसरे की बुद्धि सेवा में, अयुक्त जो होता है उसकी बुद्धि सेवा में नहीं होती है। जिस समय अयुक्त व्यक्ति की इंद्रिया विषयों में विचरण करती है, क्या कहते हैं, अयुक्त व्यक्ति की इंद्रिया, जो अयुक्त है, जो भगवान वगैरह में युक्त, भगवान से युक्त नहीं है, उसकी इंद्रिया जो विषयों में विचरण करती है, विषयों में अर्थात घर से निकला, आज छुट्टी है तो क्या सोचा, चलो समुद्र के किनारे जाके आते हैं, तो गया अनेक प्रकार के एरिया से, बड़े फिल्म सिटी, नरीमन पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया, ऐसा सब घूम फिर के, जुहू चौपाटी वगैरह वगैरह। तो ये अयुक्त व्यक्ति की इंद्रिया जो है, इस प्रकार से अयुक्त व्यक्ति जो भगवत भाव में नहीं है, वो इस प्रकार से विषयों के संपर्क में आया, कितना क्या क्या देखा उसने पूरे रस्ते भर में, दिन भर में, ये इंद्रिया इसकी विषयों में विचरण करती है, तब क्या होता है, उस समय उसके ऊपर काम शत्रु का प्रभाव होता है। और ये जो काम शत्रु है, ये अग्नि की तरह है, कैसा है, भयंकर अग्नि की तरह है काम शत्रु। अब ये अग्नि काम शत्रु का जब उसके ऊपर प्रभाव होता है और वो विषयों के संपर्क में और जाता ही जा रहा है, तो ये विषय क्या करते हैं, तेल का काम करते, विषय क्या करते हैं, तेल का काम करते। ऑलरेडी काम अग्नि भयंकर बढ़ चुका है, और अब विषय और एक से बढ़कर एक विषय सामने आ रहे हैं। विषय का, विषय क्या काम करते हैं, तेल का काम करते हैं। अब हम यहां पे, रविवार के क्लास में हमको किसी ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी ये सब कुछ हो रहा है, कितना भयंकर हो रहा है, देख रहे हैं हम, अत्याचार हो रहे हैं, है ना, रेप वगैरह जैसी घटनाएं बढ़ रही है, संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो फूट फूट के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि विषय, मीडिया, एटिकेट्स, सदाचार, नियम मनुष्य के लिए ये सब है। तो कहने वाले मीडिया में क्या कहते हैं, इससे नहीं हो रहा है प्रभु जी, इससे होता तो अमेरिका में होता। अब अमेरिका में हो रहा होगा तो अमेरिकन हमारे घर में आएंगे हमको बोलने के लिए, उनको आदत पड़ चुकी है उस बात की, वो क्यों बोलेंगे अभी। कहने का अर्थ यह है, छोटे छोटे बच्चे, अभी के जो जनरेशन हम यह देख रहे हैं, विशेषकर मेट्रोपॉलिटन लाइफ, उनके जो माता पिता है, हमने हमारे माता पिताओं को कभी कभार बचपन से लेके कुछ 10-15-20 साल तक तो भी कम से कम यह देखा भाई वो पूजा पाठ करते हैं, शनिवार को मारुति का उपवास करते हैं, गुरुवार को गुरु का उपवास करते हैं, शुक्रवार को देवी, ऐसा हमने देखा है हमारे आंखों के सामने। अब के ये जो जनरेशन, इनके माता पिता क्या कर रहे हैं, ये बच्चे क्या देख रहे हैं, MTV। हमारे डैडी क्या कर रहे हैं, रात को ऑफिस में से आते हैं MTV देखते हैं, बच्चे भी देख रहे हैं कि हमारे डैडी, हमारी मम्मी, हमारे माता पिता ये सब कर रहे हैं। इसका जब उसके ऊपर संस्कार होता है और ये बच्चे जब बाहर जाते हैं विषयों में तो उनको क्या दिखता है, उनको विचित्र प्रकार की एडवर्टाइज दिखती है, बैनर्स दिखते हैं, पोस्टर्स दिखते हैं, फोटो दिखते हैं, मोबाइल में आता है, SMS आता है, इतना सब कुछ दिखता है। तो ये यहां पे जो कह जा रहा है कि काम शत्रु का पहले ही प्रभाव हो गया है इंटरनेट और घर के वातावरण के कारण। अब ये विषय क्या कर रहे हैं, उसमें तेल डाल रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये जो कामाग्नि है ये तेल के कारण प्रज्वलित हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, भयंकर आग की लपेट हो जाती है बड़ी, और फिर ये कामाग्नि क्रोधाग्नि में बदल जाती है। कैसे हो जाती है, ये कामाग्नि में बदल जाता है और फिर क्या होता है, फिर इस प्रकार के रेप्स और ये इस प्रकार की घटनाएं होती है, और केवल उतना ही नहीं होता है, मर्डर किया जाता है, खून किया जाता है, बड़ी भयंकर विभत्स तरीके से मर्डर होता है। क्यों, क्योंकि ये कामाग्नि जो है वो क्रोधाग्नि में बदल गया है, और जब क्रोधाग्नि में वो बदल जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, ये हमने पहले देखा है। कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह, मोहित हो जाते, स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति भंशात बुद्धि नाश हो जाता है, और जब बुद्धि नाश हो जाता है तो प्रणश्यति, तो क्या हो जाता है, विनश्यति, विनाश हो जाता है, फांसी पे लटकाया जाता है, फांसी मिल जाती है, फिर कोर्ट केसेस होती है और कोर्ट को बोलना पड़ता है इनको फांसी पे चढ़ाओ। बेसिक बात क्या है, मूल बात क्या है, कहां से शुरुआत हुई इसकी, इन सब बातों की, विष इंद्रिया जो है, ये जो मन जो है इंद्रियों के कोई एक इंद्रियों की में आसक्त हो जाता है और फिर उसको विषय मिल जाते हैं, और विषय कौन देता है, प्रकृति देती है, हमारे आसपास के हमारे मेंबर्स देते हैं, फैमिली मेंबर्स देते हैं, समाज देता है, क्योंकि सभी को अभी फ्री रहने का है, कोई नियम नहीं, स्वैराचार इसको कहते हैं, सदाचार नहीं, सबको कैसे रहना है, स्वैराचार, हम जैसा चाहेंगे, हम जैसा सोचेंगे उस प्रकार से हमको रहना है, सदाचार से नहीं, स्वैराचार से रहना है, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, हम 21वें शताब्दी के हैं, बड़े एडवांस हैं हम। शेर भी शहर में, छोटा सा 5-6 साल का बच्चा मुझे बोलता है, कल जब उसने उस पेपर का पिक्चर देखा, उस न्यूज पेपर में का पिक्चर देखा, वो बच्चा बोलता है कि शेर भी किसी के घर में आके उसको खाने की हिम्मत नहीं करता, जहां दुकान वगैरह है, शॉप्स वगैरह, उसमें घुस के मारने की हिम्मत नहीं करता, ये इंसान इतना जानवर से भी बदतर कैसे हुआ कि खुलेआम घुस के इंसान को मार डाल रहा है, 6 साल का बच्चा पूछता है। और सो कॉल्ड अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने वाले 21वीं शताब्दी के एडवांस ज्ञानी लोग जो है वो इस बात को नहीं समझ रहे कि उसका रूट कॉज क्या है, क्यों ये जानवर की प्रवृत्ति हो गई है? दुर्योधन ऐसा जानवर की प्रवृत्ति पे क्यों उतर आया है? भगवान अर्जुन को जो उत्तर दे रहे वो पटाक से वन सेंटेंस में उत्तर नहीं है, वो उत्तर दे रहे हमारे सबके लिए कि जानवर की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए, जीव दया होनी चाहिए। कितनी कुछ बातें इस श्लोक में भगवान ने बताई, प्रवृत्ति सदाचार। इसलिए हमने काउंसलिंग में सबसे पहले सदाचार की चर्चा की, सदाचार होना चाहिए। और इस प्रकार से फिर बुद्धि सदाचार नहीं होता है तो नष्ट हो जाती है। और यह जो है ये अयुक्त व्यक्ति की अवस्था है। जो अयुक्त होते, जो भक्ति में नहीं होते हैं, भगवान के विषय में समझना नहीं चाहते हैं, उनकी यह दशा होती है। परंतु जो विधेय आत्मा होते हैं, जो भगवान के भक्ति युक्त होते हैं, उनके इंद्रियों में कामाग्नि नहीं होता है, वो अपने घर का ही संस्कार उनको होता है, भक्तों के संग में होते हैं, एसोसिएशन उनको शुद्ध होता है, तो उनके अंदर कामाग्नि प्रज्वलित नहीं होता है। उनके अंदर कृष्ण भावना रूपी अमृत द्रव रस रहता है। उनके हृदय में कृष्ण भावना अमृत, प्रभुपाद जी ने नाम रखा है अमृत। जैसा ये कामाग्नि उत्तेजित होता है तो ये अमृत क्या है, अमृत कैसा होता है, रस के प्रमाण, रस के अनुसार होता है। जैसा ये कामाग्नि प्रज्वलित होता है, ये कृष्ण भावना अमृत उस कामाग्नि को बुझा देता है। और ये कामाग्नि जब बुझ जाता है तो क्रोधाग्नि आने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, और क्रोधाग्नि नहीं आएगा तो सम्मोहित होने की कोई जरूरत ही नहीं है, और सम्मोहित नहीं होगे तो बुद्धि का नाश नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं डिवोटीज आर ऑलवेज इंटेलिजेंट, भक्त जो होते हैं वो हमेशा बुद्धिमान होते हैं। क्यों? कि विधेय आत्मा की वो व्याख्या है 64 में। तो यह जो कृष्ण कृपा रूपी शीतलता है, कृष्ण कृपा रूपी शीतलता के कारण भक्त हमेशा बुद्धिमान रहते हैं, और जो अयुक्त होते हैं उनके लिए कदम कदम पे धोखा है। फिर दूसरा शब्द कहा गया है यन्मनो अनुविधीयते, अर्थात जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है। इस श्लोक में क्या बताया है पढ़िए। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, ये जो इंद्रिया है, इन इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहे, कोई एक इंद्रिय पे मन निरंतर लगा रहता है, वो क्या करता है, मनुष्य को, मनुष्य के बुद्धि को हर लेता है। इंद्रिया तो बहुत है, पंचेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय है ना, पर ये जो मन है, ध्यान से सुनिए, ये जो मन है किसी एक में लगा रहता है, है कि नहीं, किसी एक में लगा रहता है। इससे यह पता चलता है कि मन में ऐसी क्षमता ही नहीं कि एक साथ वो एक, एक साथ वो दो या दो से अधिक इंद्रियों के साथ। आप सोचिए इस बात को बहुत गहराई से। मन में, मन के पास इतनी शक्ति या क्षमता ही नहीं है कि एक ही समय वो दो या दो से ज्यादा इंद्रियों के साथ रहे, एट ए टाइम, एट ए टाइम वो एक ही इंद्रिय के साथ रहता है। उसका उदाहरण है जैसे हिरन, वो शिकारी क्या करता है, हिरन को बहुत सुंदर म्यूजिक सुनाता है, ट्यून बजाता है, बढ़िया अच्छा। अब वो हिरन क्या करता है, अरे वाह, एकदम कान बड़े करता है, कितना सुंदर, वाह, रेडियो मिर्ची, आजकल के बच्चे रेडियो मिर्ची इतना सुनने में लग जाते हैं, वो हिरन के जैसा सुन रहा है, पूरा श्रवण इंद्रिय उसमें लगा हुआ है। अब ये शिकारी क्या करता है, बाण छोड़ता है हिरण के सामने से, आग के सामने से बाण छोड़ता है। लेकिन ये हिरण म्यूजिक इतना जोरदार सुन रहा है, इतना मन उसका उस श्रवण इंद्रिय में लग गया, उस हिरण का मन श्रवण इंद्रिय में लग गया। अब नेत्र इंद्रिय जो है, दूसरा इंद्रिय क्या है, नेत्र, ये नेत्र पे मन का ध्यान नहीं है, है नहीं है। और वो बाण सीधा माथे में घुस जाता है, क्यों कि मन एट ए टाइम केवल एक ही इंद्रिय के कब्जे में आ सकता है। आप सोचेंगे जानवर है इसलिए, दूसरा मछली, मछली देखिए, मछली को वो आटा ब्रेड आटा डालते हैं वो खीले में बांध के, खीला होता है ना पकड़, खीला होता है शार्क, उसमें ब्रेड लगाते हैं मच्छी पकड़ने के लिए, समुद्र में पानी में फेंकते हैं, रसना रस जीवा जीव, जैसा ही मछली उसको देखती बोलता है बड़ा टेस्टी है ये तो, बहुत दिनों बाद मिला ब्रेड, अभी तक तो सड़ा गला कोई भी जानवर मिला खा जाती थी, ब्रेड मिल रहा है, तक रसना। मन जो है किस इंद्रिय विषय के चक्र में आ गया, जीवा के, रसना अर्थात जीव, जीवा के चक्र में आ गया। लेकिन जैसा ही वो जाता है खाते रहता है, लेकिन वो स्पर्शेंद्रिय को भूल जाता है कि वो जो काटा है वो उसकी जीवा को पकड़ लिया है, परंतु मन वो भूल जाता है, क्यों, क्योंकि एट ए टाइम एक ही इंद्रिय पे वो लगा रहा है, और बिचारी मछली फंस जाती है। आप सोचेंगे ये जानवर है, मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता है, हमने देखा है, ये जो रेडियो मिर्ची सुनने वाले हैं, ये बाइक चलाते हैं, और बाइक चलाते वो इतना श्रवण में लगे रहते हैं, सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं, और हाइट तो तब रहती है जब वो उनके साथ उनके साथीदार बैठे रहते हैं। तो उनका मन पूरी तरह से उस श्रवण इंद्रिय में लगा है, सामने ट्रक आ रहा है या डिवाइडर है या पेड़ है इतना बड़ा, वो भी नहीं दिखता है। बहुत बार मैं समझता हूं 60% से ज्यादा एक्सीडेंट इसी के कारण है। नहीं दिखता है, क्यों, क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वो मन एट ए टाइम एक ही श्रवण इंद्रिय में लगा है, आंख के सामने दूसरा कुछ दिखता नहीं है, नहीं दिखता है। दूसरा उदाहरण, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, और बहुत सुंदर राजभोग प्रसाद महाप्रसाद की थाली हमारे सामने परोसी है, और साइड में किसी ने बहुत सुंदर भजन लगाया है, क्या होगा, थोड़ी देर में हम प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद के पश्चात किसी ने हमको पूछा प्रभु जी भजन कौन सा चल रहा था, कुछ तो भी बज रहा था पर कौन सा भजन चल रहा था पता नहीं। हाँ हाँ होता है ना ऐसे, अरे क्यों, इतना जोर की आवाज थी, इतना जोर से आवाज था उसका, स्लो नहीं था, अच्छा प्रवचन भी नहीं था कि ठीक है, प्रवचन तो लाइव भी सुनने को नहीं होता है। परंतु कुछ म्यूजिक गाना भजन कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन वो इतना जोर का वो चल रहा है, म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर पश्चात पूछे क्या है, तो उल्टा भी हो सकता है, म्यूजिक में पूरा मन उसी में लग गया, श्रवण इंद्रिय में, भूख ज्यादा है नहीं, लेकिन किसी ने प्रभु जी प्रसाद प्रसाद प्रभु जी ठीक है, किसी ने लाके ठीक है रखो रखो प्लेट रख दिया, और म्यूजिक बहुत ध्यान से सुन रहे, प्लेट है सामने थोड़ा खा लिया, आधे घंटे बाद पूछा प्रभु जी आपने प्रसाद लिया, क्या लिया प्रसाद में, प्रसाद में क्या लिया भूल, पता नहीं क्यों, क्योंकि मन एट ए टाइम एक समय एक ही इंद्रिय के संपर्क में रहता है और वो एक ही इंद्रिय उसको क्या कर देती है, काबिज कब्जा कर लेती है उसके विषयों के कारण। स्पर्शेंद्रिय विशेषकर, स्पर्शेंद्रिय के कारण बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े सो कॉल ज्ञानी लोग भी फंस जाते हैं, उनके साथ धोखा हो जाता है, नष्ट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है उनके लाइफ में स्पर्शेंद्रिय के कारण। तो इस बात से हमको बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए, जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं जितनी भी होती है वो इसी के कारण होती है। परंतु अभ्यास के द्वारा मन को यह ट्रेनिंग दी जा सकती है जिसके कारण मन गतिशील होता है और बड़ी बड़े वेग से एक इंद्रियों से दूसरे इंद्रिय, दूसरे इंद्रियों से तीसरे इंद्रिय, पटापट फास्ट गतिशील होकर सारे इंद्रियों के पास तेजी से जाता है। ऐसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि इंद्रिय मन सारे इंद्रियों के पास जा सकता है अपनी गति बढ़ा के, गतिशीलता होने के कारण मन एट ए टाइम सारे इंद्रियों के पास जा सकता है, तेजी से जा सकता है। और विधेय आत्मा जो होते हैं उनका मन इस प्रकार से सभी के पास जाता है। अब कैसे? क्योंकि उनका मन पूर्ण पुरुषोत्तम पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व है, पूर्ण व्यक्तिमत्व संपूर्ण जो है, परिपूर्ण जो है भगवान, उनका मन भगवान में लगा हुआ रहता है, इंद्रियों में नहीं लगा रहता। मन भगवान में लगा रहने के कारण उनको इंद्रियों को केवल चेक करना पड़ता है, इंद्रियों के साथ वो अटैच नहीं हो जाते क्योंकि ऑलरेडी अटैच हो चुके हैं। ऑलरेडी उस भगवान के साथ अटैच हो चुके हैं, इसलिए कोई एक इंद्रिय से वो अटैच नहीं होते, फटाफट फटाफट इंद्रियों को चेक करते जाते, ठीक है ये वो, ये इच्छा वो इच्छा, ठीक है डिलीट, अच्छा क्या करने का, सिनेमा देखने के जाने का इच्छा आ गया, डिलीट, श्रवण इंद्रिय कैंसल, नेत्र इंद्रिय दृष्टि बंद कैंसल, दूसरा क्या सड़क फटक, ऐसे उतना फास्ट वो मन चलता है क्योंकि उनके मन को, उनका मन कहीं हुक हो चुका है, हुक समझते हैं ना, उसको टांग दिया, उसको उस मन को कहीं तो भी हुक लगा दिया, टांग दिया है, कहां लग गई उनकी हुक, हाँ लॉक लगा दिया, लॉक कर दिया है, कहां लॉक कर दिया, श्री नंद नंदन भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, वो मन जो है श्री नंद नंदन के चरणों को बांध दिया गया है, बंध गया है, इसलिए अभय है, क्या है, निर्भय, अभय, भय नहीं है। कौन सा भय नहीं है? हमारी नाव डूबने का भय नहीं है क्योंकि मन उस चरण कमलों को, चरणार विंद को अटैच हो गया। ऐसे हो सकता है? परीक्षित महाराज उदाहरण, परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ तो वो सभी को देखकर, वैसे जन्म में सभी को देखकर वो थोड़े से प्रश्न चिन्ह आ गया और सभी की वो परीक्षा करने लगे जो उनके सामने खड़े थे, सभी की परीक्षा करने लगे। क्या परीक्षा करने लगे? वो ये परीक्षा करने लगे कि वो भगवान श्री कृष्ण के जैसा सुंदर कोई है यहां पे? वहां पे तो राजमहल, मतलब उनका तो इतनी व्यवस्था थी, सब कुछ था, सब कोई थे, परंतु वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे कि कृष्ण के जैसा कोई सुंदर है उसकी परीक्षा कर रहे थे, इसलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम रख दिया परीक्षित। वो ढूंढ रहे हैं, उनके भी नेत्रों को बहुत से प्रलोभन दिख रहे थे, विषय, उनके भी मन को वहां पे बहुत विषय दिखे, लेकिन झुप 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 सारे विषय से निकल गए और क्या सोचने लगे, कृष्ण जैसा कोई है क्या, बाकी मुझे कोई राजकुमारी और सुंदरियों से कोई लेना देना नहीं है, या ऐश्वर्य या राजमहल से कोई लेना देना, मुझे क्या चाहिए, वो कृष्ण के जैसा सुंदर कोई है क्या, वो परीक्षा कर रहे सभी। तो जो विधेय आत्मा होते हैं उनका मन इस प्रकार से चरणारविंद को, श्री भगवान के चरण कमलों पे स्थित रहता है, स्थिर रहता है, अटैच रहता है। इसके कारण उनका मन एक इंद्रियों से दूसरे इंद्रियों, दूसरे इंद्रियों के से तीसरे इंद्रिय, सारे इंद्रियों के पास फटाफट फटाफट जाता है। एक ही इंद्रिय के चक्र में आके विषयों के वशीभूत होके नष्ट नहीं होता है, बुद्धि को नष्ट नहीं होता। हरे कृष्णा हरे तो इस प्रकार से थोड़ा ही बचा है, 2 मिनट लेवे कि नहीं, 2-4 मिनट है। फिर कहते तदस्य हरति प्रज्ञाम, दूसरी पंक्ति, वह इंद्रिया उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। कौन सी इंद्रिया, जो विषयों के वशीभूतों के मन को जिसने काबिज कर लिया, कब्जा कर लिया है मन के ऊपर। तीसरे अध्याय में भगवान कहते इंद्रियाणि मनोर्बुद्धिर अस्याधिष्ठा मुच्यतः, क्या कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि, ये जो काम शत्रु है, ये जो काम रोग है, इसके 3 निवास स्थान है। कितने, 3 निवास स्थान। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि अस्याधिष्ठति मुच्यते, इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रिय मन और बुद्धि। सबसे पहले ये काम शत्रु इंद्रियों में घुसता है, जैसे नेत्र देखेंगे, त्वचा स्पर्श के लिए लालाहित रहेगी। तो ये जो है पहले क्या होता है, काम शत्रु इंद्रियों में घुसता है। एक वो इंद्रियों में घुसने के पश्चात विषयों के कारण मन को वशीभूत करता है, फिर मन में घुसता है। जब मन में भी घुसता है तो फिर बुद्धि को क्या करता है, बुद्धि को नष्ट करता है। अर्थात ये जो काम शत्रु है इसके निवास स्थान कितने हैं, 3 है। कौन से कौन से, अब इस श्लोक में आगे भगवान कहते हैं कि ये जो काम है ये रजोगुणी होता है, क्योंकि ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, आकर्षण, रजोगुण होता है आकर्षण, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा आसक्त हो जाता है और बुद्धि को विनष्ट कर देता है, बुद्धि का मानो अपहरण कर लेता है। क्योंकि शरीर को भी कब्जे में कर लेता है, मन को भी कब्जे में कर लेता है, बुद्धि अकेली क्या करेगी, है कि नहीं, अकेला कैप्टन क्या करेगा, बोट में भी क्रैक आ गया, बोट में भी क्रैक आ गया, हवा भी बड़ी भयंकर तेज, मतलब तूफान चल रहा है सुनामी, तो बेचारा कैप्टन क्या करेगा, बोट भी टूट गई, हवा भी भयंकर है, कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये बुद्धि का अपहरण कर लेता है। तो हमको यह समझना चाहिए कि रजोगुण के प्रभाव से बुद्धि का अपहरण होता है, और रजोगुण अर्थात आकर्षण, आसक्ति, ट्रैप, वेब, बहुत सारे नाम दे सकते हैं। तो ऐसे रजोगुणी बुद्धि का वर्णन 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, वो कहते हैं रजोगुण बुद्धि का अर्थ क्या है, यथा धर्मम अधर्मम च। रजोगुणी बुद्धि अर्थात वो बुद्धि, वो बुद्धि को यही समझ में नहीं आता है धर्म क्या है और अधर्म क्या है, क्या सही है और क्या झूठ है। गणपति के सामने दारू पी के नृत्य करते हैं, नवरात्रि में वे विचार करते, दुर्गा जी के सामने नाचते नाचते, एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण वे विचार के स्तर पे, कहां करते हैं? दुर्गा जी के सामने। ये रजोगुणी लक्षण है। ये रजोगुण के कारण क्या होता है? बुद्धि नष्ट हो जाती है। और रजोगुणी किसको कहते हैं? जो धर्म और अधर्म में अंतर नहीं करता। और फिर कार्यम च अकार्यम च, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें भी वो भेद नहीं करता। कर ही नहीं सकता कि ये करनीय है ये अकरणीय, ये करने जैसा है ये करने जैसा नहीं है, ये भी नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खत्म हो गई। और वो क्यों हुआ? रजोगुण के कारण। तो अपने अपना वो टेम्परेचर गिन जिसको मेजर करते क्या बोलते, थर्मामीटर, तो ये थर्मामीटर हमेशा ऐसा लगाते रखना चाहिए। कौन सा? रजोगुण बढ़ा कि तमोगुण बढ़ा कि सत्वगुण बढ़ा, तुरंत थर्मामीटर लगा देना चाहिए अपने आप को। भाई देखो, हम ही अपने आप को जज कर सकते। दुनिया का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है दुनिया में जो हमारे बारे में हमको बताए। हमारे बारे में हम ही हमको बता सकते हैं, हमारा जजमेंट हम ही हम कर सकते हैं कि मेरा कौन सा बड़ा, रजो बड़ा कि तमो बड़ा, क्या बड़ा, धर्म और अधर्म में कोई फर्क समझ में आ रहा है कि सब एक जैसा ही लग रहा है, सभी सत्य है, सब सही है, सब एक ही है। क्या एक ही है, क्या सत्य है, कुछ पता नहीं। तो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसा कोई सिनेमा है उसमें ऐसा ही कुछ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है लोगों को पता नहीं। सोचिए, वो राजसिक प्रवृत्ति। हाँ, वो ये श्लोक बताया होगा फिर, रजोगुण से क्या होता है तमोगुण से क्या होता है। तो यह बात बहुत ही ध्यान में रखने योग्य है। जिस प्रकार कोई दर्पण पे धूल बैठी रहती है, कोई आईने पे धूल बैठी रहती है और उस आईने के सामने जाके हम अपना चेहरा देखना चाहे, मुख देखना चाहे, देख सकते हैं? दिखेगा ही नहीं। उसी प्रकार से ये बुद्धि के ऊपर काम रूपी धूल बैठ गई है। अब ये काम रूपी धूल इस बुद्धि के ऊपर बैठ गई है, इसके कारण हम कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं रख रहे हैं, हम धर्म और अधर्म को समझने की क्षमता नहीं रख रहे हैं। हम क्या करें क्या ना करें ये समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बुद्धि रूपी आईने पे धूल बैठ गई। कौन सी धूल? काम रोग की, भयंकर। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वत्म स्नपनम परम विजयते हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो इस श्री कृष्ण संकीर्तन से काम रूपी धूल हट सकती है। हटा दीजिए, इसको देर मत कीजिए। इसके लिए सत्संग कीजिए, उत्कंठा बढ़ाइए, श्रवण कीजिए, सिंसियर रहिए। बाकी सारी कामों के लिए मुझे पता है आप बहुत सिंसियर हैं। अनुभव किया इसलिए बोल रहा हूं, 2 साल में। उतनी सिंसियरिटी, ये जो अति महत्व का कार्य है इसके लिए कीजिए, नहीं तो भेद अभेद ही नहीं कर पाएंगे हम। इसमें बताया है जो भेद और अभेद नहीं कर पाते हैं उसकी बुद्धि पे काम रोक चढ़ गया है, तो भेद ही नहीं कर पाए, है ना। तो इस प्रकार से इस दर्पण को स्वच्छ करना हमारा कर्तव्य है। और ये काम शत्रु जो है तूफान वायु के जैसा है, मन को, मन अर्थात मन में काम शत्रु भरा हुआ है, काम के विचार भरे हुए हैं और ये तूफान हमारे इस नाव को कभी भी डुबो सकता है। देखिए, अच्छे अच्छे भक्त, यूँ भरत महाराज का उदाहरण शास्त्र में कई बार दिया जाता है, जड़ भरत, इतना भक्ति है परंतु उनके नेत्र उस हिरण को देख लिए, उस हिरण को देखने से क्या हुआ, वो नेत्र विषय वो मन रूपी तूफान बढ़ गया कि नहीं, पहला तो इसको ही बचाना चाहिए। मेरे सिवा तो इसका कोई है ही नहीं। हम तो कई बार अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं दूसरों के विषय में, मेरे सिवा अमुक अमुक व्यक्ति का दूसरा कोई है ही नहीं, अर्थात भगवान है ही नहीं। यदि भगवान है तो वो मैं हूं। क्योंकि मेरे सिवा इसका कोई है नहीं और मैं ही हूं, तो अर्थात मैं भगवान हूं। तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। इसलिए भगवद गीता का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करने की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, योग्यता, मूल योग्यता है, वो क्या है? शरणागति। माताजी का प्रश्न सबने सुना। माताजी पूछ बताए हैं कि ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान जब आ जाता है तो व्यक्ति पहचान नहीं दिखाता। प्रभु जी हरे कृष्णा, आपको 2 साल पहले मिला था, कौन है आप? मेरे असिस्टेंट के थ्रू आओ, डायरेक्ट मेरे पास आ गए, उसको पूछो, मैं नहीं पहचानता। प्रभु जी 2 महीने पहले तो मिले थे, लेकिन अभी मेरी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई है। तो कहने का अर्थ ये, शास्त्र का ज्ञान भी व्यक्ति को अहंकार के स्तर पे ले जाता है। मैंने पिछले समय बताया था, बहुत पहले हम वृंदावन में गए थे, पहले के हमारे 2003 साल की बात, 3-4 की। उस समय उतरे और मथुरा से वो अटाला चुंगी क्या बोलते वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ से साइकिल रिक्शा लिए अपने इस्कॉन मंदिर की ओर जाने के लिए। और साइकिल रिक्शा से जब बैठ के जा रहे थे तो हमको बड़ा प्रसन्न लग रहा था। तो हमने रिक्शा वाले को बोला, प्रभु जी आप कितने भाग्यशाली, इतने दिव्य धाम में रहते हैं, मैं कब से देख रहा हूँ रास्ते के दोनों साइड से कंटिन्यूस बोर्ड लगे हुए हैं और सारी बोर्ड पे लिखा हुआ है भागवत कथा, भागवत कथा, परम पूज्य अमके अमके महाराज। अरे पूरे रास्ते भर में प्रभु जी इतनी भागवत कथा यहाँ पे चल रही है। मैं उनको बोला, मतलब आप बहुत धन्य, हमको तो ये देख के भी बड़ा धन्यता का अनुभव होता है। अब वो रिक्शा वाले के पैर में चप्पल नहीं, कपड़े ऐसे जैसे तैसे, सर को ऐसे बांधा हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई, ज्यादा उम्र भी नहीं होगी, 18-20 साल का उम्र का होगा। तो हमारी तरफ देख के वो बोला, प्रभु जी यही है। उधर ब्रज भाषा में बोला, जरा स्वीटनेस थी, हमको ऐसे बोलते नहीं होता, यही है। वो बोले, ज्ञानी तो सब है लेकिन संत कोई नहीं। देखिए 18 साल का ब्रजवासी, 18-20 साल का, ज्ञानी तो सब है संत कोई नहीं। हमारे हृदय को छिन्न विच्छिन्न कर दिए उसके शब्द, और हमारी भी आँख खोल दी उसने कि कभी भविष्य में हमारे मन में ऐसा अनर्थ ना आए, और यदि आता है तो तुरंत वो सेवा बंद कर देनी चाहिए। यदि किसी के भी मन में ऐसा भाव आ जाता है कि मैं श्रेष्ठ, इस सेवा के कारण मैं श्रेष्ठ हूँ, तुरंत उस सेवा को त्याग करके मंदिर के शू स्टॉल पे सेवा करनी चाहिए। ये हमारे अहंकार को मार सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस भगवत भक्ति, भगवत गीता के ज्ञान से या कोई भी शास्त्र के ज्ञान से अहंकार निश्चित तौर पर बढ़ता है यदि शरणागति का भाव नहीं है। इसलिए अर्जुन ने भगवान को कहा, क्या कहा? कार्पण्य दोषो प्रहुत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढते चेत यश्रेयस्यानि, क्या कहते हैं कि मैंने आपका आश्रय लिया, यश्रेयस्यानिश्चितम्। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम्, मैंने आपका आश्रय ग्रहण किया है, कृपा करके मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, आश्रय अर्थात शरणागति। हे भगवान, मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूं और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि कोई लोग शुद्ध हृदय वाले हैं वो कुछ सुनना चाहते हैं, इसलिए आप मेरे मुख में कुछ शब्द डाल रहे हो, नहीं तो मैं तो महापति हूं। कभी भी जैसे प्रचार करते हैं आप, किसी को बताते हैं भगवत ज्ञान, तो इस भाव से बताइए। संसार में आपको बहुत लोग मिलते होंगे, बहुत लोग पूछते होंगे, बहुत लोगों को हम बताते हैं, पर बताते वक्त हमारा यह भाव होना चाहिए, नहीं तो ये जो तूफान है इस नाव को डुबो देगा। ये काम रोग है, इसमें चर्चा हुई है, परंतु फिर दूसरा क्या है, मान प्रतिष्ठा, फिर आगे आएगा निर्माण मोहाजित संग दोषा, आगे उसमें चर्चा होगी, परंतु मान प्रतिष्ठा सम्मान अहंकार ये सब बढ़ता है ज्ञान से। इसके प्रति वॉच योर ईगो एंड माइंड, दूसरे का नहीं, अपने ही मन और अपने ही अहंकार पे ध्यान रखो रोज, दूसरे के अहंकार पे या दूसरे के मन पे ध्यान मत रखो, उससे हमारा अहंकार बढ़ता है। अपने ही अहंकार पे, अपने ही रोग पे ध्यान रखो, दूसरे के रोग पे मत सोचो। आत्मा को जानो, आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।